ओम शांति। आज एक विशेष बात पर पहले चर्चा करेंगे और इस एक विशेष धारणा के द्वारा हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, ईश्वरीय जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे वो बात स्पष्ट होगी। धारणा है, हर एक के जीवन में, बहुतों के जीवन में शिकायतें बहुत होती हैं। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इसने ऐसे किया, ये मुझे पुरुषार्थ नहीं करने देते, ये न होता तो ठीक हो जाता। सबके पास होती हैं या नहीं? माताओं के पास होती हैं। बच्चे बड़ा तंग करते हैं, ये अच्छे होते तो हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेते हैं। पति ऐसा है, अच्छा मिलता तो हम बहुत अच्छे योगी बन जाते हैं। माताओं की बहुत समस्या, आजकल दुनिया में एक समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, शराब पीने की। टेंशन बहुत, चिंताएं, कुछ और भी चीजें, किसी को नींद नहीं आती, किसी को और कुछ समस्या, तो लोग शराब पीते हैं और वो बढ़ता जाता है। उससे घरों में अशांति बहुत हो रही है। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी वो है क्या, जो किसी की शिकायत न करे, अपने को चेंज करे, हर परिस्थिति में अपनी उन्नति का मार्ग निकालने वाले, कहीं रुकते नहीं। ना वो ये कहेंगे हम बहुत बिजी हैं, हमारी दिनचर्या ऐसी है, हम रात को 2 बजे काम से आते हैं, हमारा ये मिस होता है, हमारे घर वाले मुरली नहीं सुनने देते, शिकायत होगी ही नहीं। जैसे किसी ने बहुत अच्छी बात कही, वो हमारे यहाँ रेडियो मधुबन वाले सुना रहे थे, हम भी सुन लेते हैं जब कार में चलते हैं ना, तो रेडियो मधुबन ही सुनते हैं, उधर मेहसाना से चालू हो जाता है। तो ताला चाहे कितना भी बड़ा हो, है ना, चाबी तो उसकी होती ही है, छोटी तो है ही, पर चाबी भले बड़ी भी हो, चाबी पर चाबी तो होती ही है। ताला लग गया अब खत्म हुआ खेल, ऐसा तो नहीं ना, चाबी है। हाँ, नंबर वाले भी हैं। तो ताला खुलने के साधन जैसे हैं, वैसे ही समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाबी क्या, समाधान उसका है ही। हमें जानना चाहिए, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि समस्या का समाधान है नहीं। किसी कुछ भी समस्या, समस्या अनेक बढ़ती जाती हैं, बाबा के ज्ञान वालों को कन्या ज्ञान में चलती हैं, माँ बाप चलने नहीं देते, समस्याएं बढ़ती हैं, मुरली में भी नहीं जाने देते। आज ही एक का फोन था, उसके टीचर बता रही थी उसके साथ ऐसा ऐसा कर रहे, एक कन्या को मार ही डाला अभी 5-7 दिन पहले, टीचर थी वो लौकिक, मार दिया माँ बाप, माँ बाप ने मार दिया, रात को कुछ ऐसा खिला दिया और सवेरे जल्दी उसका संस्कार भी कर दिया। कोई है नहीं जो शिकायत करे, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए, हो गया खत्म। क्यों जाती हो? देखो, पाप का घड़ा क्यों भर गया? माँ अपने बच्चों को मारे, बाप तो मार देते थे, पर माँ मारे, क्या है ये कलयुग के एंड की पहचान? बहुत जगह केस हो रहे, माताओं के कुमाता हो गई हैं, वो लड़कों को मार देती हैं। तो समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। हम समाधान ढूंढेंगे, शिकायतें नहीं। कितनी बड़ी समस्या हो, कोई व्यक्ति बिल्कुल ऐसा दिखाई देता हो, जब तक ये है तब तक हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, ये मरे तो लाइन क्लियर हो। जिसके लिए लोग सोचते हैं ना, ये मरे उसकी आयु लंबी हो जाती है, वो साथ ही रहेंगे, हिसाब पूरा लेके ही जाएंगे। तो मार्ग अपना निकालना है। शिकायतें सोच लें सभी, अपने अपने को देखें, मेरे पास क्या शिकायत है। हर व्यक्ति शिकायत रखता है, हर व्यक्ति। कोई एक मेरे पास आई, माता लड़का बहुत अच्छी नौकरी पर है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत ज्यादा आनंद ही आनंद है, लेकिन माता जी क्या बंधन फील करती है, मुझे इस लड़के के लिए घर में रहना पड़ता है, मैं सेवा नहीं कर सकती। आनंद, कोई कमाई की चिंता नहीं, कोई झंझट नहीं, लड़का वेरी स्वीट, बहुत अच्छा, सेवाओं में जैसे समर्पित, सारा धन लगा दो माताजी, जितना चाहे लगा दो, कोई चिंता नहीं। और माताजी इस बात से थोड़ी परेशान कि मुझे उसका खाना बनाना पड़ता है, देखा भाई वो मैंने पूछा कितने बजे घर आता है, रात को 10:30। तो भाई माँ को सब तैयारी रखनी पड़ेगी ना, माँ कहे नहीं आके तुम अपना खाना बना लेना, तो ये तो उचित भी नहीं है किसी भी तरह से। तो देखिए, हर मनुष्य कुछ ना कुछ शिकायत लेकर बैठा है, हमें शिकायत लेकर बैठना नहीं है, सब अपने को चेक कर लें, मेरे पास पुरुषार्थ करने के लिए क्या सेल्फ कंप्लेंट है अपने पास। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कोई रोक रहा है, किसी को कोई रोक रहा है, लेकिन सत्य क्या है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। पुरुषार्थ, संकल्प शक्ति, योग की शक्ति इतनी जबरदस्त है, लोग भी अब मानने लगे दुनिया में, सबसे बड़ी शक्ति संसार में संकल्प शक्ति ही है। मैं तो बाहर वालों का सुनता रहता हूँ कभी कभी, सब स्वीकार कर रहे हैं, चाहे मेडिकल साइंस हो, मनोविज्ञान हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, संकल्प से हर समस्या का समाधान किया जाता है। हम अपने संकल्पों को बिल्कुल ठीक करें, ठीक है, सभी ध्यान देंगे, शिकायत नहीं, बहुत सेवा है, इनके साथ सेवा है, ऐसी सेवा है, ऐसी होती तो बहुत अच्छा होता। हर व्यक्ति ये सोच रहा है, ये नहीं, ये जगह बहुत अच्छी है, फिर वहां जाते हैं, ये नहीं, तीसरी जगह बहुत अच्छी है, फिर वहां जाते हैं, ये भी नहीं, चौथी जगह बहुत अच्छी है। सोचना क्या चाहिए मनुष्य को, हम क्रिएटर हैं, हम क्रिएटर हैं, हम किसी भी जगह को, किसी भी सेवा को, किसी भी कार्य को सुंदर बना सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं, समय को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं। साथ ही हमारे पास कितने भी हों, हम उसी को अपनी उन्नति का साधन बना सकते हैं। कोई बिल्कुल लड़ने वाला हमारे साथ हो, कमेंट्स करने वाला हो, ईर्ष्या करने वाला हो, हमें आगे न बढ़ने देना चाहता हो, तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं। याद रखना है कि हमें स्वयं को योग्य बनाना है, और ये रहस्य जान लेना है, जो जितना योग्य बनेंगे बाबा क्या करेगा, उनकी योग्यताओं को यूज करेगा सेवाओं में। उसे सब पता है, योग्यता वही दे रहा है, गाइड कर रहा है, योग्य बनने का बल भी वहीं से मिलता है, जो उसको फॉलो करते हैं उसको पता है उनका। और असली सेवा तो चेहरे, दूसरा चलन, हमारा चरित्र, हमारा जीवन, हमारी स्थिति, हमारे योग के वाइब्रेशंस, हमारी पवित्र धारणा, हमारी श्रेष्ठ वृत्ति, इनके द्वारा सेवा असली होती है। अगर हम सेवाओं की सूक्ष्मता पे ध्यान दें, हम अपने सब सेंटर्स को देखें जहां बहुत सुंदर सेवा है, आप इस रहस्य पे जरा ध्यान देना, जहां बहुत सुंदर सेवा है वहां सेवा करने वाले निमित्त बाह्य रूप से कोई और दिखाई देते हैं, पर सेवा का विकास कुछ और आत्माओं के कारण होता है जो प्रत्यक्ष नहीं होते, जो प्रकाश में नहीं है, जो स्टेज पे भी नहीं होंगे, पर उनके वाइब्रेशंस के द्वारा, मेनली उनकी पावर ऑफ प्योरिटी के द्वारा सेवाओं में वृद्धि होती है, आत्माओं को आकर्षण होता है करने वाला। और जैसे देवकुल की आत्माएं किसी के आकर्षण में सेंटर में आई, कोर्स किसी ने भी दिया वो ज्ञान में चल गई, दिखेगा कोर्स इसने दिया, ज्ञान इसने दिया, इसलिए ये आगे बढ़े, लेकिन असली कारण था जिनके आकर्षण से खींचकर वो वहां तक आए। तो हमें ये नहीं भूलना है कि सेवा का स्वरूप भी अति सूक्ष्म है, स्थूल नहीं, और विशेष रूप से योग्यताओं के द्वारा, यानी हमारी स्थिति के द्वारा हमारी सेवाएं होती हैं। सबको याद होगा, शायद पीछे भी हमने चर्चा की थी, तीन तरह से रिजल्ट आउट होगी, यहाँ की थी चर्चा, नहीं की याद है ना, पिछले संडे की मुरली, फाइनल रिजल्ट तीन बातों के आधार से आउट होगी। पहली, कितनों को योग्य बनाया, बहुत सुंदर बात थी, केवल संदेश दिया, ज्ञान दे दिया वो नहीं, बाबा ने कहा 30 सेंटर हैं और 15 हिल रहे हैं वो नहीं, किसी के 30 ही हिल रहे हों और चलाने वाले भी हिल रहे हों, उससे नंबर नहीं मिलेंगे। योग्य कितनों को बनाया, और योग्य कौन है, एक ही बात में उत्तर दे, नहीं, जो योगी है वही योग्य है, उत्तर है, ये मुरली में ही है ये उत्तर। दूसरा था, बहुत सुंदर धारणाएं हैं तीनों, कितनों को सुख दिया, विचार करेंगे सभी, कितनों को सुख दिया, हमारी प्रसिद्ध धारणा है ना, ये सारे संसार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये संसार में, परिवारों में, फ्रेंडशिप में, बिजनेस के फील्ड में, ऑफिस में, लोग एक दूसरे को सुख कम देते हैं, कुछ ना कुछ अपना गुस्सा, ईर्ष्या द्वेष, अपना ईगो, बदले की भावना बुरे शब्दों में निकालते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। हमारा है कितनों को सुख दिया, जो यहां सुख देंगे भक्ति में क्या होगा, मायब नहीं, भक्ति में यही होगा, उनके मंदिरों में लोग जाएंगे, सुख पाएंगे, दर्शन करके ही सुख पाएंगे, उनकी भक्ति करके, उनका नाम स्मरण करके ही सुखी हो जाएंगे। तीसरी धारणा, स्वयं पूरा ब्राह्मण जीवन कितना शक्तिशाली बनकर रहे, चाहे माया के सामने, चाहे परिस्थितियों के सामने, कितने शक्तिशाली बनकर रहे, ये तीन धारणाएं हैं। देखिए बाबा सब सीक्रेट्स, सब रहस्य स्पष्ट कर देता है मुरलियों में, किसी से कुछ छुपा न रहे, कोई सोचता न रह जाए, उसी में बहुत स्पष्ट था। कॉन्फ्रेंस हुई है, संकल्प चल रहे हैं सबके, चलते हैं ना संकल्प, हमें तो कोई पूछता नहीं, हमें कोई जानता नहीं, हम योग्य हैं इन्हें पता नहीं, इतनी कॉन्फ्रेंस मधुबन में हो रही, पता नहीं हमें कभी चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा भाषण करने का, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों का स्पष्ट वर्णन किया उसमें बाबा ने, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, सेंटर में जाते हैं, हमने इतनी सेवा की, ये बहन जी तो पानी भी नहीं पूछती, हमारा नाम भी नहीं बताती क्लास में कि इसने इतनी सेवा की है, मकान बना के दिया, पूरा क्लियर था, और टीचर्स क्या सोचती हैं वो भी क्लियर था, और उससे ये क्लियर था कि महत्व इन चीजों का नहीं है, महत्व इन तीन चीजों का है, कौन कितने शक्तिशाली बनकर रहे। अगर हार खाते रहे, अगर एक एक संकल्प के कारण परेशान होते रहे, मैंने पीछे उदाहरण दिया था शेर के बच्चे का, याद है? फिर सुन लें सभी। एक शेर जंगल में रहता है, उसका बच्चा खेलते खेलते थोड़ा दूर चला जाता है, दो कुत्ते देखते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं, शेर का बच्चा वापस भागता है, कुत्ते पीछा कर रहे हैं। कुत्तों को तो आनंद आता है ना, कोई भाग रहा हो उसका पीछा कर रहे हैं। पहुंच गए शेर के पास, शेर ने देखा मेरे बच्चे के पीछे दो कुत्ते, क्या करेगा शेर? एक मारेगा आके, तुम मेरा बच्चा कुत्तों से भयभीत? बाबा को कैसा लगता होगा जब उसके बच्चे मच्छरों से भयभीत? मच्छर तो सबको ही डरा देते हैं रात को, लेकिन मच्छर माना छोटे संकल्प, छोटे संकल्प, किसी ने जरा सा कुछ कहा गए, न खुशी न स्थिति न शांति न योग। कहने वाला आनंदित है, कह के मौज मना रहा है, उसे भूल भी गया कि मैंने कुछ कहा था, और सुनने वाले कहता आइसक्रीम खा रहा है वो, और सुनने वाले गर्म हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम सोचें, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे क्या एक छोटे से संकल्प से परेशान हो जाएं, तो कितने शक्तिशाली बनकर रहे। हमें ऐसा शक्तिशाली बनना है, कौन शक्तिशाली संगम युग पर? कई लोग कहते हैं यह व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली है, गुस्सा करता है, थोड़ा रोब से रहता है, बड़ा पावरफुल है, इसके आगे जाते ही डर लगता है, बड़ा पावरफुल है। पर पावरफुल कौन है? पावरफुल कौन भाई बताएंगे? हाँ नहीं, वो तरीका है पावरफुल बनने का, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। पावरफुल किसे कहेंगे? जो सहनशील है वो पावरफुल है, और जो निर्संकल्प है वो पावरफुल है, और सबसे पावरफुल वो जो अचल अडोल है, जो साक्षी है, सबसे अधिक पावरफुल वो है या नहीं? पावर ये कोई बाहरी चीज नहीं है, स्पिरिचुअल पावर, जो किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं, निर्भय हो। निर्भयता भी बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। कोई किस चीज से डरता है, कोई किसी चीज से डरता है, और सबसे ज्यादा लोग किससे डरते हैं? मौत से तो डरते ही है। अब हम यहाँ प्रैक्टिकल की चर्चा करें, सबसे ज्यादा मनुष्य किससे डरता है? ब्राह्मण डरते हैं बहुत, ब्राह्मण मौत से नहीं डरते, माया से। और बताओ, बीमारी से नहीं, उससे भी नहीं, हाँ निंदा से, अपमान से डरते हैं या नहीं? कोई अपमान करे यहाँ हम नहीं रहेंगे भाई, कोई निंदा करे ये जगह ठीक नहीं, यहाँ तो लोग बोलते ही रहते हैं, कितना भी अच्छा करो बोलते ही रहते हैं सारा दिन। निंदा, अपमान, अपमान का भय, हाँ, वो अलग है कि क्या करना है, पर उससे भयभीत नहीं, भयभीत नहीं। भयभीत कौन होंगे? अपमान का ज्यादा डर किसको है? नहीं, बाबा का उत्तर सीधा इसी से जुड़ा हुआ, जिसमें अभिमान ज्यादा है, जिसमें अभिमान ज्यादा है उसे अपमान की भी ज्यादा फीलिंग होती है। उदाहरण ले लें आप, एक बड़ा व्यक्ति है, दूसरा छोटा है। छोटा व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है, बड़ा बाहर से आता है, ये छोटा बड़े को देखकर खड़ा नहीं होता, उसे कुर्सी नहीं देता है, क्या होगा? उसे फील होगा। और अगर अभिमान नहीं है तो फील नहीं होगा, वो उसे आराम से कह भी सकता है मुझे बैठना है जरा, लेकिन जिसको अभिमान ज्यादा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मुझे बैठने को नहीं कहा। भारत में तो ये कल्चर बहुत ज्यादा थी, बड़ों के आगे छोटे बैठते नहीं थे, हमें तो याद है बेड भी होती थी ना, उसका सिराना पैर की तरफ, दो हिस्से होते हैं ना, सिर जिधर होता है और पैर, तो बड़ों को सिराने की तरफ बैठना है, छोटों को पैर की तरफ, बड़े आगे तो छोटों को उठना ही था, बहनें तो बिल्कुल नहीं बैठती थी। अब तो कल्चर बदली, 30-40 सालों में, 50 साल में तो संसार बदल गया है। तो हम सभी इस भय से भी मुक्त हो जाएं। और दूसरा मुक्त होने का तरीका है इसकी कामना नहीं। बहुत ऊंची हमारी स्थिति है निष्काम, जिसको अपने स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ऊंचा उठाना हो, समझते हैं ना सब, अपना रूहानी लेवल, स्तर, रूहानी स्थिति बहुत ऊंची उठानी हो, उसे निष्काम होना होगा। लेकिन जो निष्काम है ये जान लेना है, उसे पद नहीं मिलेगा, उसे कोई इंचार्ज नहीं बनाएगा। अगर कोई इसका त्याग करके निष्काम भाव से सेवा करके योगी बने तो उसे इन पदों की जरूरत नहीं होगी, उसका पद कहाँ हो जाएगा, और एक चीज और, सबके दिलों में सबसे बड़ा स्थान, ये दो है ना, सबसे बड़े स्थान भगवान का दिल तख्त और मनुष्य आत्माओं का दिल तख्त। कोई किसी सीट पर, किसी गद्दी पर न बैठा हो, लेकिन सबके दिलों में किसी ने अपना स्थान बना लिया हो, तो राजा कौन बनेगा, दिलवाला, दिलवाला ही राजा बनेगा। ये बाबा की मुरली है, आप 69 की अव्यक्त मुरली पढ़ सकते हैं, कुछ लास्ट की नवंबर दिसंबर की मुरलियां पढ़ना, उनमें ये बातें हैं। मुझे याद है कभी इलेक्शन हो रहे थे इंडिया में, तब भी बाबा ने ये कहा था, वो भी तभी की है, 70-75 के आसपास की, कि जैसे देखो कोई व्यक्ति चुनता कब है, जब उसको वोट ज्यादा मिले। यहाँ भी राजाओं का चुनाव हो रहा है और राजा वो बनेंगे जो ज्यादा आत्माओं के दिलों पर राज करें, दिल से चुन रहे हों उन्हें, हमारे राजा ये हैं, बाहरी रूप से नहीं कि जबरदस्ती माना जा रहा हो, वैसे मानना ही पड़ेगा, दो स्वरूप हो जाते हैं ना, एक मनवाना और एक मानना। जिसको सच्चे दिल से मानेंगे, जो सबके दिलों पर राज करेंगे, बाबा का दिल भी उनके लिए ही होगा। सच तो यही है कि बाबा के दिल पर भी वही बैठेंगे जो सबके दिलों में बैठे होंगे, जिनको दिल से सब चाहेंगे, और इसके लिए निष्काम भाव, सुख देने की भावना, क्षमा भाव और साक्षी भाव, ये बहुत जरूरी है। इन चीजों पर सभी तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बहुत ध्यान दें। ऐसा समय आ रहा है जब साक्षी भाव धारण करना ही होगा। अब अमेरिका को देखो आप, क्या हो रहा है अमेरिका में, नाम क्या दिया तूफान को, सैंडी। वाह कितना अच्छा नाम किसने दिया होगा, जमीला बहन, सैंडी। हमारे यहाँ भी जिनके संदीप नाम होते हैं ना, लोग उन्हें सैंडी कहते हैं। कितना जबरदस्त तूफान चल रहा, अमेरिका जैसे देश में लाइट ना हो उनका जीना मुश्किल। हमारे भारत में इतना मुश्किल नहीं रहता, 2-4 दिन लोग फील करेंगे, मान लो बिजली फाइनली चली जाए सदा के लिए, तो 2-4 दिन में सब अपना साधन जुटा लेंगे, खाना ऐसे बनाना, पंखे ऐसे चलाने हैं, सब कर लेंगे ना, अभी फ्रिज नहीं है तो ऐसे काम करना है, सब साधन बना लेंगे। जब बिजली नहीं थी, अब से 50 साल पहले हर घर में होती थी क्या, 30 साल पहले भी गांवों में कहाँ थी बिजली, सब आराम से जीते थे, मक्खी मच्छरों में ही जीते थे, साधन निकाल लेते थे। तो साक्षी भाव अपनाना ही पड़ेगा। अब एक छोटी चीज पर और चिंतन करना है सबको, वो भी हम सबके लिए बहुत सुंदर है, और वो है जीवन में कुछ चीजों को स्वीकार करके ही चलना है। स्वीकार करो और अपने चित्त को शांत कर दो। अब सभी पॉइंट निकालेंगे, जीवन में गृहस्थ में कुमारियों को, कुमारों को, सेवाधारियों को, समर्पित वालों को, बहनों को, भाइयों को, भिन्न भिन्न सेवाओं में रहने वालों को किन चीजों को स्वीकार करना चाहिए। बिना स्वीकार किए परेशान रहेंगे। पहले माताओं पर हम आते हैं। एक माता है, चित्र बनाओ, उसको चार बच्चे हैं, माँ बाप हैं, चार बच्चे हैं, बड़े हो गए, उनको बच्चे हैं। अब क्या स्वीकार करना चाहिए? माँ का चित्त शांत हो जाए। करना है या नहीं अपने चित्त को शांत? शांत हो जाए। उलझनों से कुछ मिलेगा भी तो नहीं ना। क्या संकल्प करना चाहिए, क्या स्वीकार करना चाहिए घरों में? बाबा की बात है, जमीला बहनी बताएंगे। बोलो। सबका अपना अपना पाठ के साथ एक नाम और दे दे, भाग्य है। चिंता रहती है ना दूसरों की। सबका अपना अपना भाग्य है, सब भाग्य लेकर आए हैं, और हर आत्मा अपना भाग्य जो उसको है वो वहां पहुंच जाएगी। उसमें कोई उसे मदद करे या न करे वो वहां पहुंच जाएगी, वो उन्हें प्राप्त कर लेगी। कोई चिंता करे हमारे तीन बच्चे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन एक तो पढ़ता ही नहीं है, उसकी चिंता करे माँ? बिल्कुल। मैं देखता हूँ माताएं बहुत चिंतित, मैं उन्हें कहता हूँ इतनी चिंता यदि तुम अपनी कर लो श्रेष्ठ स्थिति की, तो उसका भी कल्याण हो जाए और तुम्हारा उससे पहले हो जाए। लेकिन मनुष्य को आदत है वो दूसरों की चिंता ज्यादा, तो ये स्वीकार करना होगा सबका भाग्य अपना अपना है। इसी के साथ ये भी अब स्वीकार करना है अच्छी तरह से चिंतन के साथ कि हर आत्मा 63 जन्मों का या जितने भी जन्म है पिछले, पाप और पुण्य साथ लेकर ही आई है। और तीसरी बात, उन्हें उसका फल भी मिलना है। वो मेरे बच्चे हैं इसलिए वो सुखी रहे क्योंकि मैं बाबा की हूं, ऐसा नहीं होता है। कोई सोचते हैं हम बहुत योग कर रहे हैं फिर भी बहुत विघ्न आ रहे हैं। आज ही दो फोन मेरे पास ऐसे आए, क्या करूं मैं, बहुत योग हमारा तो अच्छा पर विघ्नों से पीछा नहीं छूट रहा है। क्यों बाबा विघ्नों को नहीं हटाता? ये प्रश्न होते हैं सबके। क्या स्वीकार करें? हमने जो कुछ किया है अब वो क्लियर करना है, शांति से उसको पूरा करेंगे। सबके लिए है ये, छोटे हों या बड़े हों, सबके साथ पाप और पुण्य चले आ रहे हैं, उनसे कोई नहीं बच सकता। बाबा बचा देगा? नहीं, उसने विधि बता दी हमें, ये करो तुम सेफ। अब कुमार बताएंगे क्या स्वीकार करके चलना है। कुमार सब बैठे हैं, सोच लो। भाई बताएंगे गृहस्थ वाले आपको क्या स्वीकार करके चलना है। हरगोविंद, जो भी परिस्थितियां मेरे पास आ रही हैं, आगे पीछे हो रही हैं, उनके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, उनका समाधान भी हमारे पास है, स्वयं के पास है। और एक अच्छी बात मैं शुरू कर देता हूँ, आप सभी इस पर चिंतन करेंगे। हरेक के जीवन में मान भी तो अपमान भी, कोई ये नहीं सोचेंगे कि अपमान नहीं होगा। होगा होगा होगा, मैं एक शब्द और जोड़ देता हूँ, होना चाहिए। पसंद है या नहीं? नहीं पसंद तो किसी को नहीं, पर होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? नहीं, यही हमें महान बनाएगा। हाँ, यही हमारी शक्तियों को बढ़ाएगा। आप देख लो जितने महापुरुष हैं, आप साईं बाबा का देख लो। आपने साईं बाबा की जीवन कहानी तो नहीं पढ़ी होगी? मैंने पढ़ी है। एयरपोर्ट पे बिक रही थी किताब, मैंने खरीद ली और रास्ते में ही पढ़ ली। अच्छी मोटी थी, 150 पेज की होगी। मैंने देखा जब ये लोग थे तो लोग इन्हें वैल्यू नहीं देते थे, खाना भी नहीं देते थे, कोई गाली देते थे, मुसलमान है, है हिंदुओं में क्यों आ गया, हिंदुओं में आ गया मुसलमान गाली दे रहे, तो हिंदू है मस्जिद में क्यों रहता है, इसको खाना भी नहीं, इसको ऐसे ये वो। और फिर अब उसके नाम से लोग खा रहे हैं। मैं भी उसके मंदिर में, मुझे पिछले साल ले गए, सोने का बना दिया पूरा, चारों तरफ सिंहासन भी, दीवारों पर भी उसका पीछे का वो सिंहासन भी बना दिया। मैंने सोचा देखो लोगों ने इनको भोजन नहीं दिया और आज इनके नाम से भंडारा चल रहा है, नाम से लोग खा पी रहे हैं, कितनों का जीवन चल रहा है उनके नाम से। विदेशों में भी जाओ, विदेशी लोग साईं बाबा के भक्त हैं, साईं बाबा को याद करते हैं, हमारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। स्वामी विवेकानंद को देखो, वो विदेश में थे, उसका इतना तो पहलू हम सब जानते हैं, बड़ा नाम उसका हुआ, बड़ा पावरफुल था, लेकिन उसको फेस कितना करना पड़ा, भारत के लोगों ने उसकी कितनी गिलानी कर दी अखबारों में। तो हर व्यक्ति, वो व्यक्ति जो महान बनता है, वो इन सब चीजों को पार करके ही जाता है। लेकिन विशेषता क्या है, कौन महान बनता है, ये बातें सबके सामने आ रही संसार में, लेकिन जो इनमें अपनी स्थिति को न बिगाड़े, जो अपने विचारों को छोटा दूषित न करे, जो अपने उसमें रहे जो उसको है, वो महान बनता है। तो हम सभी इस चीज पे ध्यान दें, मान भी होगा तो अपमान भी, जीवन में जीत भी होगी तो हार भी, सुख भी मिलेगा तो निर्विघ्न जीवन भी रहेगा तो विघ्न भी आएंगे, समस्याएं नहीं होंगी, कभी समस्याओं का तूफान भी होगा, कभी लोग हमें प्यार करेंगे, कभी नफरत भी करेंगे, कभी साथ देंगे तो कभी मार्ग भी रोकेंगे। जैसे प्रकृति में सर्दी है तो कभी गर्मी भी है, टेम्परेचर का डिफरेंस देखो आप, 45, 48, 50 और कहां -50 डिग्री का अंतर हो जाता है, मनुष्य जीता है ना उसमें, अगर 50 डिग्री का अंतर कर दिया जाए तुरंत क्या होगा मनुष्य का? देखो हम ऊपर से नीचे आते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इफेक्ट होता है बॉडी पे, थकान होती है, ऊपर से नीचे उतरे थकान होगी, हमें 15 मिनट रेस्ट चाहिए बैलेंस करने के लिए, नहीं तो थकान होती है। और एकदम 50 डिग्री अंतर, 55 डिग्री अंतर, आबू में तो पीछे -9 तक चला गया, प्रकृति में भी है ना, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात हो रही है, कभी बसंत ऋतु है, इन चीजों को हमें स्वीकार करना ही होता है। सब अपने जीवन में भी देख लें किस चीज को हमें स्वीकार करना है। एक प्रैक्टिकल बात बता दूं कुमारों की, अब समर्पित वालों की, 5-7 भाई एक ही कमरे में रहे हुए हैं, रहते हैं ना शांतिवन में भी, अब सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कैसा है कोई कैसा है, किसी को सफाई से रहना पसंद है तो किसी को सफाई का ज्ञान ही नहीं है, उसने सफाई देखी नहीं थी कभी जिंदगी में, कोई शांति में रहना चाहता है तो किसी को रेडियो सुननी है, टीवी देखनी है, मोबाइल पे उसको रात को 12 बजे बात करनी है, दूसरे सो रहे तो किसी को खराटे भी लेने हैं, वो किसी के बस का तो नहीं है, और वैरायटी आप जानते हो सब। ऐसे में क्या करना है, हम भी रहे, हम मधुबन में 22 साल 5 लोग रहे साथ में, 22 साल रहे, क्या करना, कुछ चीजों को स्वीकार करके अपनी उन्नति का मार्ग निकाल लेना। मैं हमेशा एक छोटी सी बात सुनाता हूं, बाबा की मुरलियों के आहार से मैंने जान लिया था कि रात को पावरफुल योग करके ही सोना चाहिए तो सवेरे अच्छा होगा। हमारे कमरे में दो तीन लोग ऐसे थे जो 10:30 आएंगे, और पहला काम था उन्हें कहा उन दिनों रेडियो में लता के गीत चालू करना, उसके बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। रोज करते थे और बातें भी करेंगे फिर सोएंगे, हमें भी उनके साथ रहना है, दरवाजा भी खुला रखते। कई होगी तो इस पे लड़ाई हो जाती है, दरवाजा क्यों खोलते हो, बंद करो। तो मैं क्या करता था, देखो ये एक डिस्टर्बेंस था ना, लेकिन कैसे ये उन्नति का साधन बना, तो 9 से 10 क्लास होती थी, क्लास होते ही मैं कमरे में जाके मैं छत पे आ जाता था, हमारे कमरे के आगे लंबी छत, और मैं 10 से 11 वहां बहुत सुंदर अभ्यास करता था। एक घंटा 16 साल तक चला ये मेरा, 16 साल वो एक घंटा मेरे लिए वरदान हुआ। मुझे देख के दूसरा आया, 4 आए 5 आए, और एक समय ऐसा हुआ कि वो एकांत खत्म हो गया, 25 लोग घूमने लगे 10 से 11 मेरे साथ। तो वो उन्नति का साधन बन गया ना, तो एक निगेटिव चीज भी उन्नति का। मैं सोचता नहीं था कि ये क्यों ऐसा करते हैं, सोने नहीं देते मुझे, ठीक है इनका अपना एंजॉयमेंट है, हमारा अपना है, हम अपना मार्ग निकाल लेते हैं, फिर दिन में एडजस्ट करेंगे सो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो मनुष्य हर निगेटिव चीज को भी अपनी उन्नति का साधन बना ले। कोई अपमान कर रहा है, कोई आपके साथ ऐसा व्यक्ति है जो आप पे कमेंट्स करता ही है, जिसको लोग कहते हैं टॉर्चर कर रहे हैं हमें बहुत, तो हम क्या करें, इसको अपनी उन्नति का साधन बना लेंगे। ये निंदा करते हैं, ये कमेंट्स करते हैं, और मुझे रहना है इसमें अचल अडोल। पॉइंट्स यूज कर लें, हल्का रहना सीख लें, मुस्कुरा के बात को पूरा कर दें, मास्टर ऑलमाइटी का अभ्यास कर लें, उनको भी शुभ भावनाएं दे दें, तो उनकी निगेटिविटी हमारी उन्नति का साधन बन जाएगी। ये है कुछ चीजों को स्वीकार कर लेना। बीमार हो गए, एक बहन हमारे हॉस्पिटल में ऊपर ऐसी रही है एक सेंटर की समर्पित, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में जैसे सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ, बस उसका भाग्य ये था कि ऊपर का हिस्सा बचा रहा, ब्रेन सब टूट गया। अब 6 मास तो उसको लगे हैं कि वो अब बस खाट से उठ के थोड़ा बहुत चल सकती है, नहा भी नहीं सकती, अपना काम को पानी भी नहीं पी सकती, अभी आज ही मेरे से मिली। तो मैं सोच रहा था कल मुझे उससे, कल परसों जाऊंगा तो उससे बात करूंगा, मैं आज टाइम हो गया था उसका, उसको जाना था। तो स्वीकार कर लें, उसकी जो साथी है उसने बताया, ये बाबा को बार बार कहती है बाबा मुझे उठा लो। मैंने कहा भगवान को ऐसा कहने वाले इस दुनिया में 1 करोड़ लोग होते हैं रोज, अब वो किस किस को उठाए और उठा के कहां ले जाए, फिर भेजेगा तो फिर कहेंगे उठा लो, क्योंकि वो तो खेल तो विकर्मों का साथ चलेगा ना, तो कहां तक वो उठाए सबको। तो उठाने की बात नहीं, उठकर ऊपर जाए, बस ये बात है, अपनी स्पिरिचुअल लेवल को ऊपर उठा दें, बुद्धि को ऊपर उठा के ऊपर रख दें। उसी परिस्थिति में कुछ ऐसे अच्छे अभ्यास भी हैं जो किए जा सकते हैं। अगर मन में निगेटिविटी रहेगी, ये मेरे साथ क्या हो गया, कोई क्या सोचते हैं बीमारी में, मैंने ऐसे क्या पाप किए, बाबा बाबा से बात करेंगे, बाबा मैं बड़ी पापी हूं, मैंने क्या पाप कर लिए, मेरे पापों को क्षमा कर दो, आप ये कर दो, तो योग कैसा हो जाता है, शिकायतों भरा। बाबा कुछ करेगा इसमें, बाबा तो मुस्कुराएगा, बाबा तो देख लेता है ना कौन से पाप किए थे जिसकी ये सजा मिली है, और मुस्कुरा देता है कि जब पाप किए थे तब भी मेरे से पूछा था क्या कि कर लूं, तब तो पूछा नहीं था, साक्षी वो इसलिए है ना कि तुरंत देख लेता है क्या हुआ है, उसका फल है ये, उससे कोई बच नहीं सकता, भगवान भी बचा नहीं सकता, किसे किसे बचाएगा। ये तो नेचुरल संसार का खेल चल रहा है ना। तो जिस परिस्थिति में हम आ गए, भविष्य के लिए भी याद रखेंगे, उसे स्वीकार करके वहीं से उन्नति का मार्ग ढूंढ लें। कुछ भी हो गया हो, अब ये निगेटिव चिंतन के अलावा वो अगर पॉजिटिव चिंतन करे, मन को प्रसन्न कर दे कि बाबा संगम युग पर आपने मुझे जिंदा तो रख लिया, थैंक्स देने लगे बाबा को, अपने शरीर को अच्छी एनर्जी जाने लगे उससे, तो उसका शरीर बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। क्योंकि निगेटिव एनर्जी, बैड एनर्जी बीमारियों को और कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, बढ़ा देती है। अच्छी एनर्जी जाएगी, सुखद फीलिंग जाएगी, बाबा को थैंक्स देंगे, अपने पापों के लिए क्षमा याचना करेंगे, आत्माओं से जिनसे किए हैं, भगवान से तो कर ली, उन आत्माओं से जिनको हमने कष्ट दिया है, तो बहुत मदद मिल जाएगी। तो सभी चिंतन करेंगे हम किन किन बातों को स्वीकार कर लें, स्वीकार कर लें, हरेक के बाद बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, स्वीकार कर लें। जैसी हमारे पास बुद्धि है, जैसा हमारे पास तन है, जैसा परिवार है, जितनी पढ़ाई है, जितना धन है, जैसा घर है, सबको स्वीकार करके अब आगे बढ़ें। जो लोग इस समय धन के पीछे भाग रहे हैं, ज्ञान योग छोड़कर, क्या कहेंगे उन्हें, बोलो भाई लोग बताएं, वे समझदार नहीं हैं। लो भी हम यूज नहीं करेंगे सब, वे समझदार नहीं हैं, क्योंकि धन किसी को भी साथ नहीं देगा, बिल्कुल रखा रह जाएगा। अमेरिका में साथ दे रहा है अब उनको, कितने लाख लोग बेघर हो गए, आ रहा किसी के काम धन, भाग रहे होंगे छोड़ छोड़ के सब कुछ। अब हम फिर से वो सब काम याद दिला दें आपको, शांतिवन की सड़कों पर घूमते हुए क्या करना है, वाइब्रेशंस फैलाने हैं, यज्ञ को निर्विघ्न रखने के लिए 15 मिनट पावरफुल योग, सबको संपूर्ण यज्ञ, सारे सेंटर हमारे, यहाँ सब हम महान आत्माएं बैठी हैं, इष्ट देव देवियां, ये संकल्प ही किया करें हमारे सब सेवा केंद्र विघ्न मुक्त हो जाएं, निर्विघ्न हो जाएं, ये संकल्प भी काम करेंगे। ये विघ्न है, ये विघ्न है, इसमें नहीं रहना है, सब विघ्नों से मुक्त हो जाएं और अपने योग को पावरफुल। देखो बाबा के विदेशी बच्चे आए ना, यहाँ रहे बहुत, मुझे कई सुना चुके हैं कि किसी को ऐसा लगा ही नहीं कि बाबा नहीं मिला। हाँ, बहुतों को तो बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि जब बाबा आता है तो ये रहता बाबा आएगा ना, दृष्टि देगा, स्टेज पे जाएंगे, और जब पता वो नहीं आएगा तो यहीं से सब कुछ प्राप्त करना है, तो और चुस्त हो जाते हैं, अच्छी साधनाएं करते हैं। 2 तारीख के लिए भी अभी एक ही दिन है, कल और परसों, दोनों दिन हम बहुत अच्छी साधना करें। चलो लिख लें आप जो लिख रहे हैं, पहली, रोज सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा से मुलाकात, दृष्टि लेना और संसार को दृष्टि देना, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। 5 स्वरूपों का अभ्यास कई बार कर दें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और ज्ञान सूर्य सम्मुख है, ये ज्वालामुखी योग भी हो जाता है। साथ में पूज्य और पूर्वज की स्मृति, इतने अभ्यास करेंगे, साथ में वो भी जो पिछली बार हमने चर्चा की थी, प्रकृति को 10 मिनट प्योर वाइब्रेशंस देना, दोनों दिन सदा ही करेंगे, कल और परसों विशेष रूप से, और परसों के दिन विशेष रूप से, परसों बाबा का दिन 2 तारीख, बाबा का आह्वान करेंगे, हर घंटे में 1 बार करेंगे, बाप दादा को बुलाएंगे और देखेंगे परम धाम से शिव बाबा चल दिए, नीचे उतरने लगे, ब्रह्मातन में प्रविष्ट हुए, फिर दोनों आ गए हमारे सामने, हाथ सिर पे रख दिया, तिलक लगा दिया, वरदान दिया, ये सब अभ्यास जो आप जानते हैं वो करेंगे बहुत अच्छी तरह, तो सवेरे से ही मिलन की अनुभूति होने लगेगी। धारणा ये ध्यान रखेंगे, नो कंप्लेंट और एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। अब हम बाबा का आह्वान करते हैं, योग अभ्यास करेंगे। चलो सभी बहुत मग्न होकर बिल्कुल बाबा के मिलन की सुंदर अनुभूति करेंगे। चलें परम धाम में, बुद्धि को ले चलें, महाज्योति सर्वशक्तिवान, प्यार से निमंत्रण देंगे, हम आपकी प्यारी संतान बहुत प्यार से आपसे मिलने की इंतजार में बैठे हैं। हे प्यार के सागर, हे खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर हमसे मिलने के लिए नीचे आ जाओ। हमारी आवाज सुनकर ज्ञान सूर्य नीचे उतरने लगे, सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, अब दोनों नीचे आ रहे हैं। दिव्य फरिश्ता जिनके अंग अंग से चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने, बाबा के मस्तक में महाज्योति चमक रही है, दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, वरदान दिया बच्चे, सर्व शक्ति संपन्न भव, विजयी भव। सामने महाज्योति है, एकाग्र कर दें स्वयं को उन पर।